नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ली। रूस ने यूक्रेन में शांति समझौता होने की स्थिति में पश्चिमी शांति सेना तैनात करने की योजना को खारिज किया। ईरान में आर्थिक शिकायतों को लेकर 12वें दिन जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हुई झड़पों में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए और 30 लोग घायल हुए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 4-1 से एशेज श्रृंखला जीती। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र निकायों और भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिका के हितों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका की सदस्यता वापस लेना शीर्षक वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री ट्रंप ने कहा कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भाग लेना या किसी भी तरह से उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के खिलाफ है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के आतंकरोधी प्रयासों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अमरीकी प्रतिनिधि सभा के 56वें अध्यक्ष माइक जॉनसन का आभार व्यक्त किया है। श्री क्वात्रा ने कैपिटल हिल में अध्यक्ष माइक जॉनसन से मुलाकात की और भारत अमरीका द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में अमरीकी दूतावास के बाहर आए लोगों के एक समूह ने वेनेजुएला में अमरीकी हस्तक्षेप और पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने किया, जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। इस पार्टी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यों की निंदा की है और मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा है कि अमरीका के साथ संबंधों पर अभूतपूर्व दाग लग गया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला सभी महाद्वीपों के बड़े बाजारों से जुड़कर विविध आर्थिक रणनीति जारी रखेगा। सरकारी टेलीविजन पर सीधे प्रसारण में अंतरिम राष्ट्रपति ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के प्रति बहिष्कार की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध न तो असामान्य हैं और न ही असंतुलित हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला द्वारा 8 देशों को किए जाने वाले 71% निर्यात में से 25% अमरीका को होता है। रूस ने यूक्रेन में शांति समझौता होने की स्थिति में पश्चिमी शांति सेना तैनात करने की योजना को खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में नाटो सेना भेजने का बार बार विरोध किया है। उन्होंने इन प्रस्तावों को खतरनाक और विनाशकारी बताया। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध विराम होने पर यूक्रेन में सेना तैनात करने के प्रस्ताव की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। एक रिपोर्ट।
रूसी सेना के रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन के निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोग पानी की कमी और बिजली आपूर्ति बाधित होने का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन सरकार ने कहा कि निप्रो पेत्रोवस्क और जापोरिजिया में बिजली नहीं है और महत्वपूर्ण बुनियादी केंद्र रिजर्व बिजली पर चल रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने 97 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 70 को वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध इस साल के मध्य तक समाप्त हो सकता है। साइप्रस में उन्होंने अपने सहयोगियों से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमरीकी विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विश्व में लोकतंत्र पर जिस तरह हमला किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार उनकी ये टिप्पणी मुख्य रूप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने जैसी हाल की घटना के संदर्भ में है। क्रीमिया पर रूस के कब्जे और यूक्रेन पर हमले को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री स्टेनमियर ने कहा कि अमरीका का व्यवहार एक दूसरा ऐतिहासिक बदलाव है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान में आर्थिक शिकायतों को लेकर 12वें दिन जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हुई झड़पों में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए और 30 लोग घायल हुए हैं। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि दुकानें बंद करके दुकानदारों के सड़कों पर उतरने के बाद चहार महल और बख्तियारी प्रांत के लॉडिगन शहर में हिंसा भड़क उठी। खबरों के अनुसार सैनिकों पर हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। फ्रांस के पेरिस शहर में किसानों ने दक्षिण अमरीकी देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौते के विरोध में ट्रैक्टरों से सड़कें जाम कर दी। दक्षिण पंथी संगठन रूरल यूनियन के किसानों ने पेरिस में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उन्होंने आशंका जताई कि दक्षिण अमरीकी व्यापार समूह मार्कोसुर के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय संघ सस्ते खाद्य पदार्थों से भर जाएगा। किसानों ने ऊंची कीमतों और अत्यधिक स्थानीय नियमों का भी विरोध किया। इसराइल और सीरिया सैन्य तनाव कम करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। ये समझौता अमरीका के विशेष दूत टॉम बैरक की निगरानी में पेरिस में हुई बातचीत के दौरान सामने आया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका की यात्रा के पहले दिन उच्च स्तरीय वार्ता की। उन्होंने श्रीलंका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से बातचीत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान उन्होंने आपसी रक्षा सहयोग के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और श्रीलंकाई सेना को ठोस समर्थन देने पर चर्चा की।
भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश बनाने में सेना की अहम भूमिका पर जोर दिया और श्रीलंका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भाषण देते हुए मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में खास और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बात कही। कोलंबो में अपने कार्यक्रमों के दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीलंका के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग बढ़ाने के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी पर भी फोकस किया गया। जनरल द्विवेदी ने श्रीलंका के आर्मी कमांडर के साथ भी मुलाकात की और मिलिट्री गाड़ियां, एम्बुलेंस और ट्रेनिंग सिमुलेटर सौंपे, जिससे भारत श्रीलंका डिफेंस पार्टनरशिप में और मजबूती देखी जा सकती है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के तेजगांव में कल रात हुई गोलीबारी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी से संबंधित संगठन के एक नेता की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीजुर रहमान मुसव्विर के रूप में हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नेपाल निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को होने वाले नेशनल असेंबली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी है। सूची के अनुसार विभिन्न दलों के 44 उम्मीदवारों ने 19 पदों के लिए चुनाव में नामांकन दाखिल किया है। कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने तोमका मियाजाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पीवी सिंधु का कल क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची से मुकाबला होगा। वहीं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने भी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी 384 रन पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 567 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ली। रूस ने यूक्रेन में शांति समझौता होने की स्थिति में पश्चिमी शांति सेना तैनात करने की योजना को खारिज किया। ईरान में आर्थिक शिकायतों को लेकर 12वें दिन जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हुई झड़पों में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए और 30 लोग घायल हुए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्वालालंपुर में मलेशिया ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 4-1 से एशेज श्रृंखला जीती। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।